कक्षा में आप सबका स्वागत है। महाभारत में पिछले कुछ सोमवारों से चर्चा ये कर रहे हैं कि कैसे अब तक जन्म हुआ कौरवों और पांडवों का द्वेष बढ़ा। जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि महाभारत, इसमें सब कुछ है, राजनीति है, द्वेष है, प्रेम है, मित्रता है, जो भी इस जगत में है, जो भी भावनाएं इस जगत में हम देखते हैं वो महाभारत में पाई जाती हैं। और साथ ही साथ उन भावनाओं की पूर्णता क्या है, उन भावनाओं की पराकाष्ठा क्या है, या उन भावनाओं का सच्चा उपयोग क्या है, ये भी महाभारत समझाता है। जैसे उदाहरण के लिए मित्रता, मित्रता कर्ण और दुर्योधन की भी थी, मित्रता अर्जुन और कृष्ण की भी थी, तो महाभारत में इन दोनों का वर्णन किया गया। मित्रता का वर्णन हुआ और मित्रता के वर्णन के बाद यह भी बताया गया कि मित्रता की पराकाष्ठा क्या है, मित्रता की सीमा या परिपूर्णता क्या है। भगवान श्री कृष्ण से मित्रता, तो अर्जुन की मित्रता कृष्ण से थी, लेकिन और भी कई मित्रताओं का वर्णन है जो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकी। तो इसीलिए चाहे हम राजनीति लें, मित्रता लें, प्रेम लें, वात्सल्य लें, कोई भी भावनाएं क्यों न लें, इन सारी भावनाओं की पराकाष्ठा या सीमा भगवान श्री कृष्ण में जाकर समाप्त होती है। ये महाभारत का संदेश है। इसीलिए इतनी सारी, इतनी बड़ी रचना व्यासदेव ने की। चाहते तो सरलता से भगवत गीता केवल दे सकते थे, इतनी बड़ी व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता थी व्यासदेव को या श्री कृष्ण को। तो महाभारत का संदेश श्री कृष्ण का गुणगान है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे शुरुआत हो, अंत हो या मध्य हो, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो अंतो च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते। एक ही व्यक्ति का गुणगान है, चाहे आप वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, इतिहास संहिताएं पढ़िए, रामायण पढ़िए या फिर महाभारत पढ़िए, आदो शुरुआत में, अंतो अंत में, मध्ये च बीच में, हरि ही सर्वत्र गीयते। केवल भगवान का ही गुणगान है और यही महाभारत है। चरित्र लिए गए पांडवों के, कौरवों के, लेकिन उनको जोड़ा गया श्री कृष्ण से, ये सिखलाने के लिए कि हमारे जीवन में हमारे अलग अलग कार्य हो सकते हैं, हमारी अलग अलग स्थिति हो सकती है, अलग अलग संबंध हो सकते हैं, लेकिन पूर्णता उनको कृष्ण से जोड़ना, और ये महाभारत का संदेश है। हरि ही सर्वत्र गीयते। तो अब तक हम लोग सुन चुके हैं कि कैसे कौरवों पांडवों का जन्म हुआ। जब व्यासदेव आए सत्यवती के पास और उन्होंने कहा सत्यवती से कि अब समय खराब आने वाला है, अब आप यहां मत रुकिए, ये हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे। व्यासदेव ने कहा अब आपके लिए ठीक समय नहीं है, आप देख नहीं पाएंगी, आपके ही वंश का नाश होगा और आपके ही वंश में आने वाला, आपका ही वंशज आपके ही वंश का नाश करेगा, आपके लिए ठीक नहीं है, अब आपका समय हो गया, अब आप जाइए। तो उस समय अंबिका और अंबालिका के साथ माता सत्यवती वन में चली गई और फिर किसी को नहीं पता कि कैसे उन्होंने अपने देह को त्यागा योग अग्नि में इत्यादि। अंबा रह गई थी, अगर आपको स्मरण होगा, अंबा, अंबालिका, अंबिका तीन थी बहनें जिनको भीष्म देव लेकर आए थे। अंबिका और अंबालिका ने तो विवाह कर लिया था विचित्र वीर्य से, लेकिन अंबा ने नहीं किया था। तो अंबिका और अंबालिका तो चली गई सत्यवती के साथ, अंबा का क्या हुआ? क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार चर्चा हुई थी कि अंबा ने जाकर परशुराम जी से कहा था, याद है आप सबको? परशुराम जी ने कहा चिंता नहीं करो, मेरा शिष्य है, अभी कहता हूं विवाह करने के लिए। भीष्म के पास आए, विवाह करो, भीष्म ने मना कर दिया। युद्ध हुआ और उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ, परशुराम जी अंबा से कुछ कह नहीं पाए। तो अंबा उसके बाद गई और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, बहुत कड़ी तपस्या की, शिवजी को प्रसन्न किया। और जब शिवजी प्रकट हुए तो उन्होंने अंबा से पूछा, वैसे ये अंबा है कौन, क्यों इतना भीष्म के पीछे पड़ी है अंबा, बताइए? अरे शाले के पास भेजा था, और लोग थे, किसी से विवाह कर लेते, भीष्म ने कहा था ठीक है मैं विवाह करा देता हूं, या वे विचित्र वीर्य से कर लेती, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो भीष्म से ही करना है, क्योंकि वो पूर्व जन्म में भीष्म की पत्नी थी। जब भीष्म वसु थे, आपको याद है हमने भीष्म की कथा कहते हुए कहा था कि आठ वसु थे, जिन्होंने जिनमें से एक द्यु, उन्होंने अपराध किया था वशिष्ठ मुनि के प्रति और इसीलिए उन्हें श्राप मिला था। तो उनकी पत्नी थी वरांगी और वही जन्म लेकर आई थी अंबा के रूप में, इसीलिए केवल भीष्म से विवाह करूंगी। कई कई बार लोग कहते हैं ना विवाह सात जन्मों का बंधन है, तो थोड़ा सा प्रमाण है, एक ही जन्म में कितना कष्ट होता है, अब सात जन्म तक बंधन होगा तो क्या होगा, ये भीष्म की कथा से पता चलता है। तो खैर अंबा गई, शिवजी से प्रार्थना की, तपस्या की, शिवजी प्रसन्न हुए। शिवजी ने पूछा मांगो, क्या मांगती हो? अंबा ने कहा भीष्म की मृत्यु। और अंबा भीष्म की मृत्यु क्यों चाहती थी, वो तो उनकी पत्नी थी, ताकि जल्दी मृत्यु हो और वो वापस आए, वो फिर से वसु बने और फिर से वो पति पत्नी के रूप में रह सके। तो उन्होंने कहा कि मुझे भीष्म की मृत्यु का कारण बनना। तो शिवजी ने आशीर्वाद दिया, शिवजी ने उसे दो आशीर्वाद दिए अंबा को। पहला कि ठीक है तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी, और दूसरा कि तुम पहले पुत्री के रूप में जन्म लोगी लेकिन फिर तुम्हारा स्वरूप पुत्र में बदल जाएगा। और एक बात कही शिव जी ने, एक हार दिया, फूलों का हार, पुष्प का हार, और कहा इस हार को ले जाओ, जो भी राजा इस हार को स्वीकार कर लेगा, अपने गले में डाल लेगा, वही भीष्म की मृत्यु का कारण होगा। तो अब अंबा उस हार को लेकर हर राजा के पास गई और बताया कि ऐसे शिवजी ने कहा है कि जो भी ये हार धारण करेगा वो भीष्म की मृत्यु का कारण होगा। तो सब घबरा गए, किसी ने हार स्वीकार नहीं किया कि अरे अरे भीष्म, उनसे कौन युद्ध करेगा, क्योंकि सब जानते थे जिस समय अंबा अंबालिका का वहरण किया था भीष्म ने, सारे राजा उपस्थित थे, कोई कुछ कर नहीं पाया। तो इसीलिए किसी ने हार स्वीकार नहीं किया। थककर अंबा ने वो हार द्रुपद महाराज के दरवाजे पर रख दिया और वो चली गई और अपनी योग अग्नि के में प्रवेश कर गई। उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया अंबा ने। और वही अंबा द्रुपद महाराज के पुत्री के रूप में प्रकट हुई। द्रुपद महाराज प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, शिवजी से भी, शिवजी से प्रार्थना कर रहे थे कि एक पुत्र चाहिए। शिवजी ने कहा पहले तुम्हारी पुत्री होगी और वो बाद में पुत्र बन जाएगी। तो शिवजी की बात का इतना विश्वास हो गया कि जब पुत्री हुई तो उसका पालन पुत्र के रूप में किया, जितने भी संस्कार होते हैं पुत्र के वो किए, उपनयन संस्कार वो भी किया पुत्र मानकर, क्योंकि शिवजी की बात पर विश्वास था। और इतना ही नहीं, उसका नाम था उस समय शिखंडिनी, जब पुत्री हुई तो उसका नाम रखा शिखंडिनी, लेकिन पालन पुत्र की तरह किया। और इतना ही नहीं, उसका विवाह भी एक स्त्री से किया ये कहकर कि मेरा पुत्र है और इसके लिए मैं एक राजकुमारी को चुनूंगा, एक राजकुमारी को चुना। और जो राजकुमारी के पिता थे उन्होंने सोचा अरे अच्छा है, द्रुपद महाराज का पुत्र है, इससे विवाह करना चाहिए अपनी पुत्री का। उन्होंने विवाह कर दिया। जब विवाह होकर पुत्री आई और जब पुत्री को पता चला कि अरे ये तो कोई पुरुष नहीं है, तो स्त्री है, ये क्या हो गया, तो तुरंत अपने पिताजी को उसने कहा, राजा को, ये क्या, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो बहुत क्रोध आया। आप सोचिए, अच्छा वो भी राजा थे, कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं। उन्होंने सोचा, द्रुपद ने ये कैसा हमारे साथ मजाक किया है, एक पुत्री है और उसको पुत्र कहकर विवाह करा दिया। सारी सेना लेकर आ गए, आक्रमण कर दिया द्रुपद के ऊपर। द्रुपद ने उनको बिठाया और समझाया। द्रुपद ने कहा, देखो दरअसल ये पुत्र है। तो उन्होंने कहा, क्या मेरी पुत्री झूठ कह रही है, वो कह रही है कि वो पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं ये पुत्र है, शिव जी ने कहा है, बात मानो। तो जब तक ये सब चल रहा था, शिखंडिनी को बहुत दुख हुआ कि क्या हो रहा है, मेरे बारे में इतना सारी बातें हैं। तो वो दुखी होकर वन में चली गई और वहां पर एक गंधर्व से भेंट हुई। गंधर्व ने पूछा, भाई क्या हुआ, इतनी दुखी हो? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे सारी स्थिति हुई। गंधर्व ने कहा, एक काम करता हूं, मैं 2 दिन के लिए अपना पुरुष रूप तुम्हें देता हूं। इसे सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, कथाएं लग रही हैं कि कल्पना है, ये पुरुष रूप उसको दे दिया, ये कैसे स्त्री है, ये देवताओं के लिए संभव है। अब देवता हम लोग कितनी बार सुनते हैं, कोई वेश बदल कर दूसरे रूप में आ गए, ब्राह्मण का रूप ले लिया, स्त्री का रूप ले लिया, देवताओं के लिए संभव है, हमारे लिए संभव नहीं। तो गंधर्व ने कहा, मैं दे देता हूं, तुम चले जाओ और वहां जाकर तुम प्रमाण कर देना कि देखो मैं पुरुष हूं, और फिर जब उसके पिताजी चले जाएं, तुम वापस आ जाना 2 दिन में, फिर से स्त्री बन जाना। तो उसने कहा, ठीक है। तो ऐसे करके गंधर्व का रूप लेके चले गए। तो यहां चर्चा हो रही थी, द्रुपद कह रहे थे, नहीं वो पुत्र है, नहीं पुत्री है। तब तक वो आए तो कहा, देखो पुत्र है, दिख रहा है। तो सारा प्रमाण हो गया, ये तो पुत्र है, पुरुष रूप था। तो जो पुत्री के पिता थे, उनको बड़ा ग्लानी हुई, बड़ी शर्म आई अपने ऊपर कि ये मैंने क्या किया, अपनी पुत्री के कहने पर आक्रमण कर दिया राजा पर, क्षमा मांगी और वापस चले गए। अब 2 दिन बाद जब शिखंडिनी अपने पुरुष रूप को लेकर उस गंधर्व के पास गई, क्योंकि कहा था कि 2 दिन में वापस देना, तब तक क्या हुआ था, गंधर्वों के राजा वहां आए थे और उन्होंने इस गंधर्व को देखा कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम अच्छे भले पुरुष थे, स्त्री कैसे हो गए? तो वो बेचारा घबरा गया, कुछ कह नहीं पाया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम स्त्री ही बने रहोगे, तुमने ऐसा काम किया है, तुम स्त्री ही बने रहोगे, और जब तक वो स्त्री जिसको तुमने अपना पुरुष रूप दिया है उसकी मृत्यु नहीं होगी, तब तक तुम स्त्री बने रहोगे। बेचारा फंस गया। देखिए कभी कभी मदद करने जाइए तो क्या क्या हो जाता है ना इस जगत में। तो बेचारा मदद करने गया कि ठीक है 2 दिन के लिए तुम मेरा रूप ले लो, लेकिन फंस गया जीवन भर के लिए। तो जब शिखंडिनी वापस आई, उन्होंने कहा ठीक है आप अपना रूप ले लीजिए। तो गंधर्व ने कहा अब ये संभव नहीं है, श्राप मिला है, अब तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए। तो वो बने शिखंडी, शिखंडिनी से फिर शिखंडी। और महाभारत के युद्ध में शिखंडी ये कारण बने भीष्म की मृत्यु का। जब शिखंडी सामने आए, योद्धा थे वो, युद्ध करते थे, अच्छी तरह युद्ध करते थे, लेकिन भीष्म ने उनके ऊपर तीर नहीं चलाए। क्या कारण था? वो तो योद्धा थे, युद्ध कर रहे थे। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में रोज 10,000 सैनिकों को मारूंगा, 10,000 सैनिक रोज, लेकिन मेरा ये एक वचन है, मैं स्त्रियों पर, बच्चों पर, और ऐसा कोई पुरुष जो स्त्री था पुरुष में बदल गया उसके ऊपर कभी तीर नहीं चलाऊंगा। ये भीष्म का प्रण था। और इसीलिए जब शिखंडी सामने आए तो भीष्म ने उनके ऊपर तीर नहीं चलाया, फिर पीछे से अर्जुन ने तीर चलाया। तो ये कथा हम लोग करेंगे। ये बहुत सुंदर प्रसंग है कि कैसे अर्जुन का क्या भाव था। आप सोचिए, अर्जुन जो कि पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वो छुप कर तीर चला रहा है, पीछे से तीर चला रहा है, और किस पर चला रहा है? उन भीष्म पर जिनकी गोद में खेला है। जिनको अपना पिता मानता था। युद्ध में जिस दिन भीष्म का वध होना था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, क्या भीष्म को माफ नहीं किया जा सकता, क्षमा नहीं की जा सकती? ठीक है, वो अधर्मों की अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, अधर्मियों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए गलती के लिए। और तब अर्जुन कहने लगे कि जब हम छोटे थे, हम खेल कर आते थे, मेरे गंदे पांव होते थे और भीष्म एकदम सफेद कपड़े पहना करते थे, चमकते हुए सफेद, और मैं उनकी गोद में बैठ जाता था, सारे कपड़े गंदे हो जाते थे उनके, और मैं उन्हें अपना पिता कहता था। बहुत लंबे समय तक मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरे पिता नहीं है, क्योंकि वो लोग छोटे थे जब पांडु महाराज की मृत्यु हो गई, तो मैं इनको अपना पिता मानता था। एक दिन इन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे पिता के पिता का पिता हूं। तो इसीलिए अर्जुन कहने लगे कि क्या क्षमा नहीं किया जा सकता? तो वो क्या प्रसंग होगा, जब हम लोग उस पर आएंगे तब चर्चा करेंगे कि अर्जुन की क्या मनस्थिति थी कि उसको भीष्म के ऊपर तीर चलाना पड़ रहा है, वो भी एक व्यक्ति के पीछे से, सामने से नहीं। तो इस प्रसंग की चर्चा हम लोग करेंगे जब आएंगे। तो इस तरह अंबा शिखंडी में बदल गई और वो भीष्म की मृत्यु का कारण हुई। तो ऐसे अंबा अंबालिका अंबिका का समय बीता। तो अब यहां हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बड़े हो गए, द्रोणाचार्य से मिले, द्रोणाचार्य ने शिक्षण देना प्रारंभ किया। पिछली बार हमने सुना था कि कैसे अर्जुन बहुत मेधावी छात्र था उनका। तो अब यह समय आया कि जब सारी शिक्षण पूरा हो गया और द्रोणाचार्य ने व्यवस्था की रंगभूमि की कि जो भी मैंने सिखाया है अब सारी जनता के सामने ये राजकुमार दिखाएंगे कि इन्होंने क्या सीखा है। तो रंगभूमि बनाई गई, बहुत विस्तार से वर्णन है महाभारत में, कैसे कैसे उन्होंने तलवार चलाना, तीर चलाना, भाले चलाना, ये सब उन्होंने दिखलाया और लोग बहुत खुश हो गए, वाह हमारे राजकुमार क्या श्रेष्ठ हैं। दरअसल श्रीपाद मध्वाचार्य लिखते हैं कि जो विद्या द्रोणाचार्य सिखा सकते थे वो कोई और नहीं सिखा सकता था। उस समय द्रोणाचार्य बहुत निपुण थे, उनके पास ऐसी ऐसी विद्याएं थी जो किसी के पास नहीं थी, और इसीलिए द्रोणाचार्य के पास बहुत से लोग आते थे। पिछली बार हमने एकलव्य की कथा कही थी, एकलव्य भी आए थे, याद है आप लोगों को? कर्ण भी आए थे, जिस समय द्रोणाचार्य सिखा रहे थे तो कर्ण भी आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कर्ण को। तो कर्ण को क्रोध आया और कर्ण चले गए परशुराम जी के पास और उन्होंने उनसे सीखा। 4 वर्ष तक परशुराम जी के पास थे, सीख रहे थे धनुर्विद्या, और बाद में परशुराम जी को पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है इत्यादि, वो कथा आप जानते हैं। एक प्रश्न आता है कि परशुराम जी तो अवतार हैं, भृगुपति रूप, वो तो अवतार हैं भगवान के, क्या वो नहीं जानते थे कि ये कर्ण झूठ बोल रहा है? कौन है कर्ण वो नहीं जानते थे कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है? क्या वो धोखे में आ गए? मध्वाचार्य बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, ऐसा नहीं था कि जिस दिन कर्ण उनके पास आया परशुराम जी के पास, तो ऐसा नहीं था कि परशुराम जी को पता नहीं था और परशुराम जी ने सोचा हाँ हाँ ये तो ब्राह्मण है, ठीक है सिखा दिया, और फिर जब एक कीड़े ने काटा, खून लगा, तब परशुराम जी को पता चला अरे तुम कौन हो। ऐसा नहीं था, ये तो केवल दिखावा, बाहरी लीला थी परशुराम जी की। तो परशुराम जी जानते थे कि ये कर्ण कौन है, फिर भी उन्होंने सिखाया, क्यों सिखाया, ये प्रश्न आता है और इसका उत्तर श्रीपाद मध्वाचार्य देते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि परशुराम जी अवतार हैं, वो जानते थे कि अगर मैंने इसको सिखाया अच्छी तरह कर्ण को, ये अगर अच्छी तरह युद्ध करने लगा तो इसके बल पर दुर्योधन अर्जुन से युद्ध करेगा, क्योंकि दुर्योधन जान जाएगा कि हाँ ये एक है कर्ण, भीष्म एक और है और दूसरा मेरा मित्र कर्ण, और इसीलिए उन्हें सिखाया। तो फिर प्रश्न आता है कि अच्छा अगर उन्होंने इसलिए सिखाया तो श्राप क्यों दिया? आप जानते हैं ना कि ये कथा कि कर्ण 4 साल सीखने के बाद उनके साथ रह रहे थे, तो एक दिन कर्ण की गोद में रखकर सिर रखकर वो सो गए। वैसे वो सोए नहीं थे, लेकिन ऐसा बाहरी दृष्टि से दिखाया गया कि वो सो गए। तो वो सो गए, अचानक एक कीड़े ने आकर काटा। वर्णन ये भी है कि वो भी कोई कीड़ा साधारण नहीं था, इंद्रदेव आए थे, क्योंकि इंद्र अर्जुन के पिता हैं और कर्ण सूर्य पुत्र हैं, तो वो चाहते थे कि मेरा पुत्र विजयी हो, तो इंद्र आए थे। खैर, तो खून लगा, परशुराम जी उठ गए। परशुराम जी ने कहा कौन हो तुम, सत्य सत्य बताओ। तो उन्होंने कहा मैं सूत पुत्र हूँ, राधेय हूँ, तो तुमने झूठ बोला तो इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ कि ये जो सारी विद्या है जब तुम्हें आवश्यकता होगी भूल जाओगे। वैसे उन्होंने श्राप ये भी दिया था कि अगर तुम, देखिए लोग कहते हैं कि कर्ण के साथ अन्याय किया, कोई अन्याय नहीं था। उन्होंने श्राप ये दिया था कि अगर तुम अहंकार से रहित होकर कोई भी युद्ध करोगे कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। बहुत स्पष्ट था, अहंकार से रहित होकर अगर युद्ध करोगे कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन कर्ण को अहंकार था, इसलिए जब भी उसने युद्ध किया अहंकार से किया। लोगों में ये गलत धारणाएं हैं कि हर स्थान पर कर्ण के साथ अन्याय हुआ, कोई अन्याय नहीं हुआ। और लोग कहते हैं कि कर्ण अर्जुन से अच्छा था, वो भी प्रमाण है महाभारत में कि ऐसा नहीं था, अभी हम चर्चा करेंगे उसकी। तो खैर श्राप दिया, तो क्यों श्राप दिया जब वो जानते थे कि ये दुर्योधन के लिए युद्ध लड़ेगा? तो इसका कारण है कि अपने पूर्व जन्म में कर्ण पहले जब यही कृष्ण राम के रूप में आए थे तो यही कर्ण सुग्रीव था और ये वाली की मृत्यु का कारण बना था। ये आप सब जानते हैं ना सुग्रीव और वाली की कथा। सुग्रीव ने मित्रता की श्री रामचंद्र से और फिर वाली को मारना है तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ, युद्ध हुआ, ये सब हम लोग वर्णन कर चुके हैं। रविवार को रामायण की कथा चल रही है तो उसमें ये वर्णन हो चुका है। तो वो सुग्रीव था और क्योंकि उसने वाली को अनावश्यक मारा था, वो कारण बना था, तो इसीलिए वाली की मृत्यु के कारण उसको दोष लगा था और उस दोष के कारण ये श्राप उसको मिला। और इसीलिए परशुराम जी ने श्राप दिया ताकि वो भूल जाए। लेकिन ये कहा था अहंकार से रहित होकर करोगे कोई नहीं हरा पाएगा, लेकिन ये जो विद्या सारी मैंने तुम्हें दी है ये तुम सब भूल जाओगे। और ऐसा ही हुआ, उस विद्या को वो भूल गए। तो अभी रंग भूमि थी, सब लोग अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक कर्ण वहां पर आए। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि केवल वो आए और द्वार पर आकर उन्होंने अपने बाहु को ऐसे जोर से पीटा। अभी देखिए हम कर रहे हैं, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जब कर्ण ने ऐसे किया तो सारी रंगभूमि हिल गई, ऐसा वर्णन है महाभारत में, इतना शक्तिशाली था वो। देखिए उस समय के क्षत्रिय ऐसे हुआ करते थे, आजकल तो नाम के क्षत्रिय हैं लोग, क्षत्रियों के नाम पे शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, कहते हैं क्षत्रियों को अनुमति है, लेकिन जो क्षत्रियों के कर्तव्य थे वो नहीं करते। तो कर्ण आए, सब लोग देखने लगे कौन है ये, अचानक आ गया इतना शक्तिशाली। तो उस समय कर्ण ने आकर कहा, अर्जुन को चुनौती दी सीधे अर्जुन को, अर्जुन ये सब तुमने जो किया है, ये जो दिखाया है, अब मैं दिखाता हूं ये कुछ भी नहीं है तुम्हारा, ये जो तुमने किया मैं अभी तुम्हें हरा सकता हूं, और तुम ये क्या बहुत बड़ा बड़ा प्रदर्शन कर रहे हो। तो अर्जुन ने उनसे कहा कि तुम कौन हो ऐसे आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तो कर्ण ने कहा कि जो वीर होते हैं वो मुख से बात नहीं करते, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो उठाओ धनुष और लड़ो मुझसे, आज तुम्हारे गुरु के सामने मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो चुनौती दी। अब अर्जुन कैसे स्वीकार कर ले कि अच्छा ठीक है रहने दो। अर्जुन ने भी तैयार हो गए, अपना धनुष उठाया और चल दिए, गुरु को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को आज्ञा दीजिए जा रहा हूं अभी युद्ध करता हूं, मैं अभी इसको मार देता हूं। सब लोग बड़े चिंतित हो गए ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो केवल खेल हो रहा था प्रदर्शन, लेकिन अब चुनौती हो गई, अब सही युद्ध होगा। और सबसे ज्यादा चिंतित हुई कुंती महारानी, क्योंकि कुंती महारानी ने देखा कि ये जो पुत्र आया है, ये जो लड़का आया है कर्ण, ये और कोई नहीं मेरा ही पुत्र है। तो यहां भी मेरा पुत्र और यहां भी मेरा पुत्र, अर्जुन भी मेरा पुत्र है, कर्ण भी, और दोनों युद्ध करने जा रहे हैं और दोनों में से निश्चित एक तो मरेगा। कुंती महारानी मूर्छित हो गई। महाभारत में वर्णन है कि उनसे सहन नहीं हुआ, वो मूर्छित हो गए। विदुर ने कुछ लोगों को बुलवाकर पानी छिड़काया और फिर उनको पुनः उनके होश में लेकर आए, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। आप सोचिए मां की क्या स्थिति हुई होगी, दोनों पुत्र हैं और दोनों लड़ने मरने जा रहे हैं उन्हीं के सामने। तो खैर जब युद्ध बस होने ही वाला था, अर्जुन भी तैयार हो गए, कृपाचार्य ने उस समय कहा, कृपाचार्य ने कहा कि देखो योद्धा जो भी तुम हो, ये अर्जुन है कुरु वंश का चिराग, इसके पिता पांडु महाराज, ये इस वंश से आया है और ये केवल राजकुमारों से, राजाओं से युद्ध कर सकता है, अधम व्यक्तियों से, नीच व्यक्तियों से राजकुमार युद्ध नहीं करते, अब अपना परिचय दो। कर्ण कुछ नहीं कर पाया, कर्ण का सर झुक गया, क्योंकि क्या कहता, कौन से राजा का पुत्र है, कौन सा राजकुमार है? अगर कहता कि मैं सूत पुत्र हूं, राधेय हूं, तो फिर कोई उसको स्वीकार नहीं करता। दुर्योधन ने उस समय देखा, अब दुर्योधन तो यही ढूंढ रहा था, क्योंकि दुर्योधन को एक व्यक्ति मिला जो अर्जुन को चुनौती दे रहा। तो दुर्योधन ने कहा कि देखिए राजा किसको कहा जाता है, एक जो वो क्षत्रिय होते हैं, दूसरे जो बलवान होते हैं, और तीसरे जो राजा के मित्र हैं उनको भी राजा कहा जाता है, ये आज से मेरा मित्र है। और क्या आप ये सोचते कि राजा को राज्य होना चाहिए? ठीक है, अभी का अभी मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूं, लाइए। तुरंत ब्राह्मण बुलाए गए, तैयारियां हुई, जल लाया गया, वहीं अभिषेक कर दिया उसका। अभिषेक मतलब उसको जो भी राज्याभिषेक किया जाता है, और उसको राजा बना दिया, आज से तुम राजा हो, अब युद्ध करो। देखिए लोग कहते हैं ये मित्रता है, ये कैसी मित्रता है बताइए? दुर्योधन ने मित्रता की केवल एक कारण से, उसको मरवाने के लिए, अर्जुन को मारो बस, मेरी मित्रता इतनी ही है। अगर सही मित्रता होती तो दुर्योधन कहता नहीं युद्ध मत लड़ो, तुम मेरे मित्र हो, छोड़ो बाद में कभी करेंगे, अब तुम मेरे मित्र हो, अब मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, नहीं अब तुम मेरे मित्र हो, जाओ मरो। ये कैसी मित्रता है? इसीलिए हम कह रहे थे कि महाभारत में सारी भावनाओं को दिया है, लेकिन उनकी पराकाष्ठा, उनकी पूर्णता को भी दिया है। तो जहां मित्रता एक द्वेषी से होती है, जहां मित्रता एक अधर्मी से होती है, जहां मित्रता एक स्वार्थी से होती है, नाश होता है। और जहां मित्रता भगवान से होती है, भक्तों से होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और नहीं तो कम से कम इस जगत में भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो कैसी मित्रता है? लोग कहते बहुत अच्छी थी मित्रता, देखिए दुर्योधन ने कैसी मित्रता निभाई। नहीं, दुर्योधन के हृदय में एक ही बात थी, ये अर्जुन से युद्ध करे, अर्जुन को मारे, ये मित्रता नहीं, ये स्वार्थ है। व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमारा स्वार्थ द्वेष को उत्पन्न करता है। और द्वेष के कारण व्यक्ति खुद भी जलता है और सारे समाज का नाश करता है। ये दुर्योधन ने किया, कभी खुश नहीं रहा, कभी प्रसन्न नहीं रहा। बचपन से केवल यही सोचता था कैसे पांडवों का नाश करूं, कैसे। और दूसरी ओर पांडव कभी नहीं सोचते थे, वो प्रसन्न थे, उनको कष्ट हुए लेकिन वो प्रसन्न थे। ये राज्य में रहकर दुखी था, ये द्वेष। इसलिए हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। ये कभी कभी ये शब्द ऐसे लगते हैं कि ये शास्त्र में अच्छा है, कहानियों में अच्छा है, द्वेष नहीं करें, किसी को किसी के साथ गलत नहीं करें। लेकिन आजकल जगत में क्या होता है, कोई सोच सकता है अरे आप व्यास आसन पर बैठकर बोल सकते हैं, लेकिन जब बाहर जाइए, काम कीजिए, व्यापार कीजिए, देखिए लोग कितना धोखा देते हैं, तो फिर कैसे हम द्वेष नहीं करें, कैसे हम धोखा नहीं दें। अगर नहीं देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये गलत धारणाएं हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने सही दृष्टि में धर्म को नहीं समझा। शास्त्रों में एक वाक्य आता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। इस वाक्य के दो भाग हैं, धर्मो रक्षति और रक्षितः। पहला वाक्य है धर्मो रक्षति, धर्म आपकी रक्षा करता है, बस। ये तो सरल है समझने के लिए कि हां धर्म हमारी रक्षा करता है। लेकिन दूसरा भाग ये बड़ी विडंबना का है, बड़े मोह में डालने वाला है। दूसरा वाक्य है रक्षितः, आपको धर्म की रक्षा करनी है। तो प्रश्न आता है धर्म हमारी रक्षा करेगा या हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्मो रक्षति या रक्षितः। तो जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। हम कोई एक बॉडीगार्ड रखें, बड़े बड़े लोग रखते हैं ना बॉडीगार्ड, उनको डर होता है। देखिए जितना व्यक्ति गलत काम करता है उतना डर बढ़ जाता है, तो बॉडीगार्ड रखते हैं कि कहीं कोई गोली नहीं मार दे। तो बॉडीगार्ड हमारी रक्षा करेगा या हम उसकी रक्षा करेंगे, सरल है ना, बॉडीगार्ड हमारी रक्षा करेगा। तो यहां कहा जा रहा है कि धर्मो रक्षति, धर्म रक्षा करेगा, लेकिन आपको धर्म की रक्षा करनी है। कैसे हो सकता है, या तो हम रक्षा करें या वो रक्षा करें। तो बड़ा विचित्र वाक्य है ये धर्मो रक्षति रक्षितः, लेकिन समझने योग्य है। धर्मो रक्षति अर्थात धर्म हमारी रक्षा करता है। और धर्म की कैसे रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है जब व्यक्ति अपने स्तर पर, व्यक्तिगत तौर पर, अपने जीवन में सबसे पहले धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है, और फिर समाज के स्तर पर, फिर समाज में चर्चा करता है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर जब वो धर्म की रक्षा करता है या धर्म का पालन करता है, धर्म के सिद्धांतों का। और धर्म के सिद्धांत क्या है, धर्म के सिद्धांतों में सबसे ऊंचा सिद्धांत एक ही है, वो कार्य कीजिए जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, वो कार्य कीजिए जो कृष्ण के निकट ले जाए, उसे धर्म कहते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो अपने स्तर पर, व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत स्तर पर धर्म की रक्षा करता है व्यक्ति, धर्म का पालन करके। धर्म शब्द संस्कृत की द्वि धातु से आता है, जिससे धरती भी आती है। आपको हमने एक बार बताया था कि संस्कृत में ऐसे शब्द होते हैं कि एक धातु से कई शब्द बनते हैं, जैसे शस धातु से शस्त्र बनता है, शास्त्र बनते हैं, ऐसे द्वि धातु से धरती बनती है, धर्म बनता है। तो धरती का अर्थ क्या है, जो धारण करती है उसे धरती कहते हैं, और धर्म का अर्थ क्या है, जो धारण करता है। क्या धारण करता है धर्म, धरती तो हम सबको धारण करती है, हम सबका बोझ उठाती है, धर्म किसका बोझ उठाता है। धर्म भी धारण करता है उन सिद्धांतों को, धर्म का सच्चा अर्थ वो है उन सिद्धांतों को जीवन में धारण करना जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, यह सच्चा धर्म है जिसका वर्णन भागवत में हुआ है। सच्चा धर्म क्या है? भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। ये सच्चा धर्म है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, तो इसीलिए धारण करना इन सिद्धांतों को अपने अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर सिद्धांतों का पालन करना ये आवश्यक है, तब धर्म की रक्षा होती है। और जब हम वो करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। तो चाहे हम मित्रता करें, चाहे प्रेम करें, चाहे हम वात्सल्य भाव दिखलाएं, चाहे दास बने, उद्देश्य एक होना चाहिए। जिसके हम दास बन रहे हैं, जिसके हम मित्र बन रहे हैं, जिससे हम वात्सल्य प्रेम कर रहे हैं, उसका लाभ, उसकी प्रसन्नता अपनी नहीं। जहां मित्रता में स्वार्थ आ गया, जहां प्रेम में स्वार्थ आ गया, वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो सच्ची मित्रता नहीं है, वो दिखावा है। और इसीलिए इस जगत में सच्ची मित्रता, सच्चा प्रेम, सच्चा वात्सल्य है ही नहीं, क्योंकि सब में स्वार्थ की भावना है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वो सबके सच्चे मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, सबके सुहृद हैं। तो क्या इसका अर्थ है कि ये सारे झूठे रिश्ते हैं? ये माता पिता का रिश्ता, ये मित्रों का रिश्ता, ये सब धोखा है और ये सबको त्याग देना चाहिए? क्या ये धर्म सिखलाता है? नहीं, धर्म सिखलाता है कि जब तक केवल इसी में रहेंगे ये छल होगा, जब इसी संबंध को भगवान से जोड़ेंगे वो सत्यता होगी। मित्रता है, कोई गलती नहीं है मित्रता होने में, मित्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, दासत्व होना चाहिए, लेकिन भगवान के संबंध में। भगवान को अलग कर चाहे आप मित्रता करें, प्रेम करें, वात्सल्य करें, ये केवल स्वार्थ है। लेकिन जहां भगवान है, केंद्र भगवान है, तो फिर चाहे मित्रता हो, फिर चाहे प्रेम हो, वात्सल्य हो, वो सब परिपूर्ण है, वो सब प्रगति के पथ पर है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे जो भी संबंध हैं, चाहे मित्र हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, उसका केंद्र कृष्ण होने चाहिए। परिवार हो, परिवार का केंद्र कृष्ण हो, पति पत्नी संताने, उनका केंद्र कृष्ण हो, उद्देश्य कृष्ण हो, तब वो परिपूर्ण है, तब हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर कृष्ण नहीं है संबंधों में, भावनाओं में, कार्यों में, श्रम एव ही केवलम, भागवत कहता केवल श्रम है। नोत्पादयेत् यदि रतिम् श्रम एव ही केवलम, रति होनी चाहिए किसमें? विश्वक्सेन कथासुया। तो रति नहीं है, प्रेम नहीं है, कृष्ण नहीं है, श्रम एव ही केवलम। तो अब आप सोचिए, जीवन भर हम कष्ट करें, जीवन भर हम संबंधों को स्थापित करें, धन अर्जन करें, परिवार को चलाएं, और अंत में पता चले श्रम एव ही केवलम। लेकिन वही धन अर्जन करें, वही परिवार चलाएं, वही मित्रता हो, कृष्ण केंद्र हो, परिपूर्णता है। इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि दूर हो जाना, सब कुछ छोड़ देना। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि त्याग देना, घर त्याग देना, परिवार त्याग देना, संन्यास ले लेना, हिमालय पर चले जाना, बाबा जी बन जाना, यह भक्ति नहीं है। आवश्यक नहीं है भक्ति के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, जहां हो वहां रहो, जिस स्थान पर हो वहां रहो, गृह ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ढाको, घर में रहो वन में रहो कहीं रहो केवल भगवान का नाम लो। यही भागवत भी कहता है, स्थाने स्थित श्रुति गतां तनु वाक मनो भी, स्थाने स्थित जहां है वहां रहिए, आप गृहस्थ हैं गृहस्थ रहिए, ब्रह्मचारी हैं ब्रह्मचारी रहिए, वानप्रस्थ हैं वानप्रस्थ रहिए, सन्यासी हैं सन्यासी रहिए, कोई आवश्यकता नहीं आश्रम बदलने की। स्थाने स्थित श्रुति गतां भगवान की कथा सुनिए, तनु वाक मनो भी सेवा कीजिए, तन से वाचा से मन से, ये भक्ति है। और इसीलिए ये जो कर्ण की और दुर्योधन की मित्रता है इसका आधार गलत है, इसीलिए सच्ची मित्रता नहीं है। तो कर्ण को राजा बनाया, अंग देश का राजा, उस समय तक सूर्यास्त हो गया, युद्ध नहीं हो पाया, सब चले गए अपने अपने स्थान पर। और अब द्रोणाचार्य ने दक्षिणा मांगी, द्रोणाचार्य चाहते थे कि मुझे अब दक्षिणा चाहिए, सबको बुलाया और कहा कि मुझे अब गुरु दक्षिणा में द्रुपद चाहिए। आपको याद है पिछली बार हमने बताया था द्रोणाचार्य का कैसा थोड़ा बहुत मन मुटाव हो गया, द्रुपद ने अपमान कर दिया द्रोणाचार्य का। अब द्रोणाचार्य का मुझे द्रुपद चाहिए, पकड़ कर लाना, ये नहीं कहा कि मार डालो, पकड़ कर लाना। देखिए और एक मित्रता का उदाहरण है, महाभारत भरा हुआ है मित्रता के उदाहरण से। एक मित्रता दुर्योधन की थी, एक मित्रता द्रुपद महाराज की थी, और उनको कैसा जवाब दिया द्रोणाचार्य ने, ये देखिए। द्रोणाचार्य ने कहा जीवित लेकर आना, पकड़ कर बांध कर लेकर आना है, ये दक्षिणा होगी मेरी। कौरवों ने कहा, सबने कहा चिंता नहीं कीजिए, हम जाएंगे अभी ले आएंगे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि हम भी जाएंगे, हम बाहर खड़े रहेंगे, हम पांचों नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लोग नहीं ला सकते, तो जाने दीजिए, अगर ये ले आए कोई बात नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूं ये नहीं ला सकते, तो इनको प्रयास करने दीजिए, और जब ये नहीं कर पाएंगे तब हम जाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, अनुमति ली उन्होंने, तो सब गए। अब हम ये बतला रहे हैं आपको कि जैसे लोग कहते हैं कि कर्ण अर्जुन से अच्छा धनुर्धर था, अब यहां प्रमाण देखिए। युद्ध करने गए द्रुपद महाराज से, कौन कौन थे उसमें, दुर्योधन दुशासन शकुनी कर्ण सब थे, कर्ण को भी लेकर गए थे युद्ध करने के लिए कि आओ द्रुपद को बंदी बनाकर लाए, और भी बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा थे, और उन सब ने मिलकर आक्रमण किया द्रुपद महाराज पर। द्रुपद महाराज अचानक, अरे ये क्या हो गया, मैंने कुछ किया नहीं, कोई युद्ध नहीं, कौन आक्रमण कर रहा है। तो आए वो भी सेना के साथ, उनके भाई थे, सब भाइयों के साथ युद्ध कर दिया उन्होंने। और महाभारत में वर्णन है दुर्योधन कर्ण शकुनी अकेले द्रुपद ने इनको हरा दिया, अकेले द्रुपद ने, कोई टिक नहीं सका उनके सामने। महाभारत में तो इतना वर्णन है कि द्रुपद ने एक एक को कितने तीर मारे, वो भी लिखा हुआ है वहां पर, दुर्योधन को कितने तीर मारे, शकुनी को कितने तीर मारे, ये सब वर्णन है। और तो और अंत में कर्ण को भागना पड़ा, दुर्योधन को भागना पड़ा, द्रुपद महाराज के सामने टिक नहीं पाए। इतनी बड़ी सेना थी ये कौरवों की, गुरु दक्षिणा देने गए थे, सारे भाई थे, 100 भाई, दुर्योधन दुशासन इत्यादि, कर्ण भी थे साथ में, शकुनी थे, सब बड़े बड़े योद्धा, युयुत्सु थे, सबको भागना पड़ा। अब बाहर ये लोग खड़े हैं पांडव, केवल समाचार आने के लिए, क्या हुआ, तो युद्ध का समाचार आ रहा है, हाँ युद्ध हो रहा है, हार रहे हैं हार रहे हैं। फिर आया समाचार कर्ण भाग रहा है, भाग गया कर्ण, महाभारत वर्णन करता कर्ण को भागना पड़ा, नहीं सह सका द्रुपद महाराज के आक्रमण को, और उस समय अर्जुन ने कहा कि हाँ अब ये भाग रहे हैं, मतलब अब ये बंदी नहीं बना पाए, तो अब हम जाएंगे। और उस समय भी उसने युधिष्ठिर से कहा आप यही रुकिए, आपकी आवश्यकता नहीं। युधिष्ठिर को लेके नहीं गए। देखिए कितना विश्वास था अर्जुन को। दुर्योधन गए तो सबको लेकर गए, कर्ण को भी ले लिए, जबकि कर्ण को गुरु दक्षिणा नहीं देनी थी, कर्ण को भी ले लिया। लेकिन जब अर्जुन गए उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप यही रहिए, युधिष्ठिर को आप बड़े भाई आपको क्या जरूरत है, हम है ना, आप रुकिए। तो अर्जुन का रथ चला, अर्जुन रथ पे, एक तरफ नकुल एक तरफ सहदेव और आगे भीम अपनी गदा लेकर, बस चार लोग गए, कोई सेना नहीं, कोई बड़े बड़े योद्धा और नहीं, चार लोग। और ऐसा वर्णन है कि भीम ने इतना उत्पात मचाया, उनकी सेना में इतना उत्पात मचाया, इतने हाथियों के सर फोड़े कि कह नहीं सकते। और कैसे एक गदा से सर फोड़ते थे हाथी के, ऐसे खून का फव्वारा निकल जाता था, हाथियों को मारना। और उसके बाद द्रुपद से युद्ध हुआ, अर्जुन ने युद्ध किया और द्रुपद को हराया और बंदी बनाया सबके सामने, उनके भाई आए बचाने के लिए, भाइयों को हराया और बनाया। और उसके बाद जब बंदी बना लिया द्रुपद को और उनके मंत्रियों को, दरअसल जब राजा को बंदी बना ले तो युद्ध समाप्त होना चाहिए, भीम की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। भीम ने कहा रहे मैंने तो अभी युद्ध ही नहीं किया, मेरा थोड़ा बाकी है। तो भीम सारी सेना को समाप्त करने लगे, तो अर्जुन ने कहा नहीं रहने दो, बस अब बंदी बना लिया, हमारी दक्षिणा इतनी थी कि हमें बंदी बनाना है, इस सेना को मत मारो। शायद अर्जुन जानते थे कि आगे मेरे ससुर होने वाले हैं, अभी उनको ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो फिर अर्जुन ने मना कर दिया, तो फिर द्रुपद को लेकर आ गए। तो देखिए प्रसंग, कहां था कर्ण अर्जुन से अच्छा? अगर अर्जुन से अच्छा होता तो क्या द्रुपद महाराज को बंदी नहीं बनाता? अकेले अर्जुन ने कर लिया, कर्ण सबके साथ मिलकर नहीं कर पाए। इसीलिए गलत फैलाया गया है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ, कर्ण को आगे नहीं आने दिया गया, कर्ण को पीछे कर दिया गया जाति के आधार पर। कोई ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ, दिया अवसर, मारो द्रुपद महाराज को, पकड़ कर लाओ, क्यों नहीं लाए? अर्जुन पकड़ कर लेकर आए। और देखिए द्रोण की मित्रता, अब चर्चा करेंगे कि द्रोण की मित्रता। देखिए जब द्रोण गए थे द्रोणाचार्य द्रुपद के पास और उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो द्रुपद ने क्या कहा था? मित्रता बराबर वालों में होती है द्रोण, ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण, मैं राजा हूं, तुमने सोचा भी कैसे कि मुझसे मित्रता करोगे? अब वही द्रुपद सामने बंदी बनकर आया, सारा राज्य द्रोणाचार्य का है, राजा को बंदी बना लिया तो राज्य उनका है, और द्रोणाचार्य के सामने बांध कर लेकर आए। तो क्या कहा, क्या द्रोणाचार्य ने कुछ उनका अपमान किया? नहीं, द्रोणाचार्य ने फिर हाथ जोड़कर वही बात कही कि द्रुपद मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे स्वीकार करो, बस यही कहा। यह सच्ची मित्रता है। उनको अहंकार नहीं हुआ, अच्छा तुम उस दम राज सिंहासन पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब देखता हूं, अब बताओ क्या करोगे? नहीं, उन्होंने कहा द्रुपद मैं तुम्हारा मित्र हूं, वही मित्र जो बचपन में था, स्वीकार करो। उसी तरह कहा जैसे पहले कहा था। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मानते हो ना, तुम्हारी इच्छा है कि एक राजा का ही मित्र राजा हो सकता है, तो ठीक है, ये आधा राज्य तुम्हारा, दक्षिण का भाग तुम्हारा, उत्तर का भाग मेरा, अब तो मुझे मित्र स्वीकार करोगे? तो देखिए द्रोणाचार्य ने राज्य इसलिए नहीं लिया कि उन्हें राज्य की कामना थी, वो गए भी नहीं राज्य करने वहां पर, केवल आधा राज्य इसलिए लिया कि मुझे मित्र स्वीकार करो, ये भावना थी द्रोण की, ये मित्रता है। क्या स्वार्थ था द्रोणाचार्य का? चाहते तो फेंक सकते थे बाहर, ये पूरा राज्य मेरा है, नहीं, उन्होंने कहा मेरा नहीं, मैं मित्रता चाहता हूं, और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें राजा से मित्रता करनी है तो चलो आधा राज्य मेरा आधा तुम्हारा, अब तो मुझे मित्र स्वीकार करो, ये भाव था द्रोणाचार्य का। तो देखिए एक मित्रता है दुर्योधन और कर्ण की, एक मित्रता है द्रोण और द्रुपद की, आगे हम चर्चा करेंगे मित्रता अर्जुन और कृष्ण की। तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि तुम जाओ, छोड़ दिया उसको। लेकिन द्रुपद को बहुत अपमान लगा। भले आधा राज्य मिल गया लेकिन बहुत अपमान हो गया, क्षत्रिय अपमान नहीं सहन कर सकते। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण शरीर पर किए हुए घाव को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए कर्ण को कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, शरीर का घाव सहन कैसे किया। तो ब्राह्मण शरीर का घाव सहन नहीं कर सकता, क्षत्रिय अपमान सहन नहीं कर सकता। शरीर पे सारा छलनी हो जाए कोई तकलीफ नहीं, उसको अच्छा लगता है। हाँ, जो क्षत्रिय होता है जब तक खून नहीं निकले उसको युद्ध में, उसको आनंद नहीं आता, खून देखकर उसका आनंद और बढ़ता है, जोश और बढ़ता है, हाँ अब युद्ध करूंगा। ब्राह्मण के लिए नहीं। तो क्षत्रिय होकर द्रुपद महाराज का अपमान हो गया, सहन नहीं कर पाए। अब फिर द्रुपद महाराज ने जाकर तपस्या की और एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति करने के लिए जो द्रोण का वध कर सके। तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए फिर द्रुपद महाराज यज्ञ करने के लिए चले गए, तपस्या भी की उन्होंने वन में जाकर और आगे चलकर यज्ञ किया। तो इस तरह से द्रुपद महाराज की मित्रता, तो देखिए हमने आज दो तरह की मित्रताओं का वर्णन किया, दोनों में क्या अंतर था, भावनाओं का, स्वार्थ का। तो इसीलिए इस जगत में धर्म का सिद्धांत पालन करना बहुत आवश्यक है, द्वेष से परे जाना बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं है हम द्वेष करें, घृणा करें, धोखा दें। हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो द्वेष करता हो, घृणा करता हो, धोखा देता हो, भौतिक दृष्टि से बहुत ऊंचा हो रहा है, बहुत धन कमा रहा है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, कोई बात नहीं, और ऐसा लग रहा है कि जो सत धर्म का पालन कर रहा है, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, उसके जीवन में बड़े कष्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अंततः विजय उसी की होगी। जब कष्ट आते हैं जीवन में तब हम प्रश्न करते हैं भगवान से, मैं ही क्यों, लेकिन हम सोचते नहीं कि जो धोखा हमने दिया था, जो धोखे से धन कमाया था, जो द्वेष किया था, उसका ये फल है। इसीलिए जीवन अच्छा जीना चाहिए, हम द्वेष नहीं करें, हम सादा जीवन जिए, जीवन का केंद्र जैसे हम बतला रहे थे भगवान को रखें, और तभी हमारे जीवन की सफलता हो सकती है, अन्यथा हमारे जीवन में केवल कष्ट ही होंगे। और इसका प्रारंभ होता है भगवान के नामोच्चारण से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आगे का वर्णन अगले सोमवार को करेंगे कि किस तरह द्रुपद ने यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति हुई, और इधर जब दुर्योधन का द्वेष बढ़ गया और अब उन्हें और एक व्यक्ति मिल गया कर्ण, तो उनका ये जो दल बन गया शकुनी दुशासन दुर्योधन और कर्ण, तो इन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई पांडवों को मारने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई टीका टिप्पणी, अगर कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, आपको माइक दिया जाएगा। किसी का कोई भी प्रश्न हो, माता जी को माइक दीजिए। ऑन कीजिए। हरे कृष्ण।
श्राद्ध के दिन जो भोजन अथवा प्रसाद बनाया जाता है वो कौवे को डाला जाता है, सब पक्षियों में कौवे को ही प्राधान्य दिया गया है।
दो प्रकार के श्राद्ध होते हैं, एक कर्मकांड दृष्टि से और एक वैष्णव पद्धति से। तो श्राद्ध में कौवे को दिया जाता है, इसके पीछे एक इतिहास है कि जो श्राद्ध जैसे हम लोग करते हैं पितरों के लोक से होता है, यमराज इत्यादि इसके जो पितृ लोक में लोग जाते हैं तो उनसे कौवा संबंधित है। तो ऐसा माना जाता है कि ये शास्त्र के अनुसार ऐसा मान लेते हैं कर्म कांड के अनुसार, शुद्ध वैष्णव पद्धति में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह कर्म कांड के अनुसार इसको माना जाता है कि अगर कौवा खा लेता है तो फिर जो पितृ लोक में जो पितृ गए हैं या जो पुरखे गए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है तो उनके लिए आगे की यात्रा संभव हो जाती है, इसीलिए कौवे को ये दिया। वैसे मान दिया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि वो संबंधित है इसीलिए उसको दिया गया है। लेकिन वैष्णव पद्धति में जब हम करते हैं तो वैष्णव पद्धति में ये है कि हम सबसे पहले भगवान को भोग अर्पण करते हैं, उसके बाद वैष्णवों को भोजन कराते, प्रसाद खिलाते हैं, कीर्तन होता है, ये हमारी पद्धति है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गायों को दे सकते हैं, क्योंकि गायों की कृपा से निश्चित जो भी अपना देह त्याग चुके हैं उनको लाभ होता है। तो वैष्णव पद्धति, तो कर्म कांड की दृष्टि से उसको किया जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, माइक यहाँ पे दीजिए। थोड़ा पास में रखकर बोलिए।
जब मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करता है तब वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है, और दुष्कर्म जो करता है वो नरक में जाता है, ऐसा कहा जाता है।
हाँ जी,
ये सत्य है या काल्पनिक है?
अब क्या करें, उसका प्रूफ तो ऐसा ही, या तो हमें जाकर देखकर आकर बताना पड़ेगा कि सत्य है या नहीं। इसको सत्य या काल्पनिक हम इस आधार पर मान सकते हैं कि हमारी श्रद्धा शास्त्रों में कितनी है। अगर हम शास्त्रों की वाणी को सत्य मानते हैं, शास्त्रों के वचनों को सत्य मानते हैं, तो फिर हमें जो भी शास्त्रों में वर्णित है उसको सत्य मानना है। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास शास्त्रों में नहीं है, हम उन्हें कल्पना मानते हैं, जैसे ही महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, भगवान का अवतार, फिर अगर हम शास्त्र को कल्पना माने तो ये सब कल्पना हो जाएगा। फिर कहाँ भौतिक जगत, फिर कहाँ आध्यात्मिक जगत, क्या मोक्ष, ये सब कल्पना हो जाएगा। तो इसीलिए शास्त्र पर श्रद्धा रखना ये आधार है भक्ति में प्रगति का। तो अगर शास्त्र कहता है कि नरक है तो हम स्वीकार करते हैं, अगर शास्त्र में वर्णन नहीं होता तो कोई भी आकर हमें कहता हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन महाभारत में भी वर्णन है, भागवत में वर्णन है, भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, और इतना ही नहीं ये भी बतलाया कि अगर आप ये कार्य करते हो तो इस नरक में जाते हो, ये दंड मिलता है, ये कार्य करते हो ये नरक में जाते हो, ये दंड मिलता है। तो जब शुकदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त वैरागी श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन कर सकते हैं, तो हम लोग भक्त के रूप में 100% उसको स्वीकार करते हैं कि वो सत्य है। तो इसीलिए शास्त्रों की वाणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो स्वर्ग और नरक का वर्णन है ये सत्य है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, जो भी है सब यहीं पर भुगतना पड़ता है, सब कुछ यहीं होता है। ये उनका मानना है। जब हम कहें कि नरक या स्वर्ग है तो क्या आधार है? हमारा आधार शास्त्र है, हम शास्त्र के आधार पर कह सकते हैं। तो इसीलिए जो भी कहें कि ये सब नहीं है उनको आधार देना चाहिए शास्त्रों का। तो इसलिए हम शास्त्र के आधार पर बड़ी विश्वास से ये कह सकते हैं कि स्वर्ग और नरक है। ठीक है, पीछे दीजिए माइक।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
भीष्मदेव प्रण लिया था ना, वो किसको वचन दिया था?
प्रण लिए थे,
प्रण वो मारेगा नहीं, श्रीअर को मारेगा नहीं, ऐसा प्रण लिया था ना
भीष्म ने।
हाँ, भीष्म ने
किस किस को नहीं मारेगा?
हाँ, कभी दिए
उन्होंने वर्णन, उन्होंने प्रण लिया था जब युद्ध हो रहा था तो उनको प्रमुख सेनापति बनाया गया। तो उन्होंने प्रमुख सेनापति बनते ही ये कहा कि ठीक है मैं 10,000 सैनिकों को मारूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों के ऊपर अस्त्र नहीं चलाऊंगा, उसमें से एक है अगर कोई बालक होगा, बच्चे होंगे। इसीलिए अभिमन्यु के वध के समय भीष्म नहीं थे, अगर भीष्म होते तो शायद अभिमन्यु का वध ऐसे नहीं होता। तो अब बालकों के ऊपर मैं तीर नहीं चलाऊंगा, दूसरा स्त्रियों के ऊपर नहीं चलाऊंगा, अगर कोई स्त्री सामने आ गई तो मैं तीर नहीं चलाऊंगा। वृद्धों पर, बहुत ज्यादा जो वृद्ध हैं उनके ऊपर नहीं। और उन्होंने कहा कि वृद्ध वृद्ध में जो युद्ध कर रहे हैं वो नहीं, उन्होंने कहा था, हाँ वृद्ध मतलब उन्होंने कहा था कि जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। ऐसे कई लोग होते थे उस समय जिन्हें बंदी जन कहते थे, जो सैनिकों को उत्साह देने के लिए साथ में रहते थे, युद्ध नहीं करते थे, तो उनको मैं नहीं मारूंगा। और कोई ऐसा पुरुष जो पहले स्त्री था और अब पुरुष हो गया है उसको भी नहीं मारूंगा, क्योंकि उसको मैं स्त्री रूप में ही देखूंगा। तो ये उन्होंने वचन लिए,
इसको वचन दिया था
ये दुर्योधन को, क्योंकि सबको, सबके सभा में थी, सब लोग बैठे थे, सारे जितने भी उन वहां के नेता थे जो थे योद्धा बड़े बड़े कौरवों के पक्ष में। तो जब उन्हें कहा गया कि आज हम लोग चुन रहे हैं, अभी युद्ध होने वाला था, तो अब हम चुन रहे हैं कि भीष्म हमारे सेनापति होंगे, तो जब ये चुनाव हुआ उनका, तो तब उनको कुछ बोलना था, तो जो उन्होंने अपनी स्पीच दी चुनाव के बाद, तब उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये कार्य करूंगा, तो सबके सामने उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, थोड़ा ऑन कीजिए उसको, शायद ऑफ कर दिया, ऑफ नहीं कीजिए, ऑन ही रहने दीजिए। हाँ बोलिए, ऑन हो गया। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा मुंह के पास रख के बोलिए।
भगवान कृष्ण कोई अवतार में आते कि नहीं?
भगवान कृष्ण कोई अवतार में आते हैं कि नहीं? 10 प्रमुख अवतार हैं भगवान के, वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन 10 प्रमुख अवतार हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे जितने गोले हैं 10 हैं। इसमें कृष्ण का चित्र दिख रहा है? नहीं है। एक दृष्टि से कृष्ण अवतार हैं और एक दृष्टि से नहीं है। अवतार का शब्द होता है अवतरति इति अवतार, जो अवतार नीचे आते हैं उनको अवतार कहते हैं, तो उस दृष्टि से अवतार हैं क्योंकि वो धाम से नीचे आए बस, लेकिन वो साधारण अवतार नहीं है क्योंकि वो अवतारी हैं। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार आते हैं, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एते चांच कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी बाकी मैंने वर्णन किए ये सब उनके अवतार हैं, लेकिन कृष्ण भगवान हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इनका ना कोई आदि है, जो अनादिर आदिर, ऐसे नहीं कि कोई इनके पहले है या इनके बराबर है। और श्रीपद रामानुजाचार्य कृष्ण का वर्णन करते हुए उनको एक शब्द यूज करते हैं, असमौर्ध्व। असमौर्ध्व मतलब जो जिनके समान कोई नहीं है, असम और ऊर्ध्व उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो असमौर्ध्व। तो इसीलिए कृष्ण को अवतारी कहा गया है, अवतार नहीं, तो उस दृष्टि से वो अवतार नहीं है। ठीक है, इसीलिए अवतारों की श्रेणी में उनका नाम नहीं आता, बलराम जी का आता है, कृष्ण का नहीं आता। यस, कृपा उसको बंद ना करें, उसको ऑन ही रखें, शायद उसमें थोड़ी।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
तो भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीनों ही परशुराम जी के शिष्य थे। तो आपने कहा अभी द्रोणाचार्य भी महाधनुर्धर थे, कर्ण भी थे, अर्जुन भी थे, और तो इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि जब भी वनवास हुआ था तभी भीष्म भी थे, अभी द्रुपद के वहां गए थे तो शायद भीष्म नहीं थे, मगर फिर भी अर्जुन ने उनको हराया। तो ये जो तीन शिष्य थे परशुराम जी के, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य और कर्ण। और दूसरा एक प्रभु जी प्रश्न है कि स्वतः भीष्म समर्थ थे उनको सिखाने के लिए, फिर भी द्रोणाचार्य के गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया,
आवश्यकता क्यों पड़ी?
कैसा है?
आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का कार्य सिखाना होता है। क्षत्रिय जब भी सीखते हैं तो प्रयास करते हैं कि किसी ब्राह्मण से सीखे, जैसे परशुराम जी वो भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण से सीखा जाता है, और ब्राह्मण भी उस समय धनुर्वेद इत्यादि में बड़े पारंगत हुआ करते थे। तो इसीलिए सिखाने का कार्य ब्राह्मणों का है, क्षत्रिय का नहीं है। पठन पाठन यजन याजन ये सब ब्राह्मणों का कार्य है। तो उस समय में ये जो वर्ण आश्रम थे इनका बड़ी कड़ाई से पालन होता था, जिसका जो कार्य है वो करते थे। तो इसलिए द्रोणाचार्य को किया गया। उससे पहले कृपाचार्य से कहा गया था, कृपाचार्य ने भी सिखाए थे धनुर्वेद। धनुर्वेद के प्रारंभ कृपाचार्य ने किया, इन लोगों को सिखाया, और फिर द्रोणाचार्य को उन्होंने बुलाकर सिखाया था। तो एक कारण ये था। और दूसरा कारण, दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि तीनों में श्रेष्ठ कौन थे, भीष्म, द्रोणाचार्य या कर्ण और या फिर अर्जुन, आपने पूछा कि अर्जुन जीत गया बाकी तीनों का क्यों, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बाकी तीनों परशुराम जी के शिष्य थे और अर्जुन कृष्ण के शिष्य थे। तो जहां पर भगवान है वहां पर विजय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवर नीतिर मतिर ममा, भगवत गीता का ये अंतिम श्लोक है। तो जहां कृष्ण है वहां विजय है। तो भले ही भीष्म श्रेष्ठ हो सकते हैं, भले ही द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सिखाया। अगर हम कहें कि अर्जुन श्रेष्ठ है तो अर्जुन को सिखाया किसने? द्रोणाचार्य ने। और भीष्म श्रेष्ठ हैं, तो इसीलिए यहां श्रेष्ठता की बात जब आती है तो ये श्रेष्ठता का मापदंड किससे होता है? इस महाभारत में दिया गया भक्ति के आधार पर। अर्जुन की विजय, ये प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कि इतने बड़े बड़े महारथी थे युद्ध में, फिर मेरे पिता का, मेरे जो वंशज थे जैसे अर्जुन इत्यादि मेरे पिता के पिता, वो कैसे जीत गए? और वो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी बड़ी मछलियां तिमिंगला, तिमिंगला मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाती, और अर्जुन तो छोटी सी मछली था, तो फिर वो कैसे जीत गया? तो वो इसलिए जीता क्योंकि उसका संबंध श्री कृष्ण से है। उसने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो अर्जुन स्वीकार करते हैं, शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वम प्रपन्न, आज से मैं आपका शिष्य हूं। तो इसीलिए अर्जुन शिष्य था भगवान का, बाकी तीनों शिष्य थे परशुराम जी के, जो एक अंश अवतार हैं, वही उन्हीं कृष्ण के जो अवतार हैं। तो इसलिए अगर श्रेष्ठता की दृष्टि धनुर्विद्या से देखी जाए तो हो सकता है कि दूसरे श्रेष्ठ थे, भीष्म श्रेष्ठ हो सकते हैं, द्रोणाचार्य श्रेष्ठ हो सकते हैं, इसीलिए उनको मार नहीं पाए सीधे सीधे। भीष्म को कहां मार पाए, द्रोणाचार्य को कहां मार पाए युद्ध में? तो उस दृष्टि से देखें तो हो सकता है वो श्रेष्ठ हो, लेकिन यहां श्रेष्ठता देखी जाती है धर्म की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, वो अर्जुन श्रेष्ठ था। इसलिए अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ जी, एक अंतिम प्रश्न, काफी समय हुआ है, उसके बाद एक छोटा सा भजन गाएंगे, भगवान के नाम का गुणगान है।
हरे कृष्ण प्रभु जी,
ऑन कर दीजिए भजन को।
हाँ प्रभु जी, अम्बा परशुराम जी के पास गई थी अपनी वेदना लेके, तो परशुराम जी ने भीष्म को आदेश दिया कि वो उनसे विवाह कर लें, परंतु भीष्म
मना कर दिया,
मना कर दिया, क्योंकि गुरु की अवज्ञा नहीं है।
ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्र का ये एक आदेश है कि अपने एक गुरु के इस आदेश को वो स्वीकार नहीं करें तो ठीक है, अनुमति है। कि अगर किसी ब्रह्मचारी को कहा जाए कि तुम विवाह करो और वो अगर उसको नहीं स्वीकार करे तो ये अनुमति है। यही भीष्म ने कहा था कि मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर रहा हूं, शास्त्र में लिखा, तो इसीलिए वो एक अनुमति है। तो कोई अगर ब्रह्मचारी बने, उसको अगर कहा जाए और उसकी इच्छा ना हो तो इस एक आदेश को मना कर सकते हैं, ये अनुमति, बाकी किसी आदेश को नहीं। ठीक है, तो आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करें तो इसको ख्याल रखिए। से थोड़े लाइट्स बंद कर दीजिए, एक भजन गाएंगे। वैसे भजन से पहले आप सबको सूचना भी दे दें कि कल हम लोगों ने सोचा, बहुत समय हुआ हम लोग कथा तो सुनते हैं भगवान के भजन नहीं गाते हैं, तो कल एक भजन संध्या रखी है, शाम को 6 बजे से हम लोग प्रारंभ करेंगे, 8 बजे तक 2 घंटा केवल भजन गाएंगे।